नमस्कार भारत, तारीख 3 अगस्त, दिन शुक्रवार। मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद। एमरसन मनांगागवा ने जीता जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति पद का चुनाव, विपक्ष ने परिणाम किए खारिज। असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के जारी होने के बाद मुख्यमंत्री सोनोवाल की चुप्पी पर क्या है पार्टी की राय?
नहीं, मुख्यमंत्री जी ने एकदम क्लियर कट आश्वासन दिया है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं, जो भारतीय नागरिक उनका नाम आएगा।
मुगल सराय रेलवे स्टेशन को भगवा रंग में रंगने पर विपक्ष का भाजपा सरकार पर जुबानी हमला।
आम लोगों की जो समस्याएं हैं उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरह से के स्लोगन तैयार कर।
होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले विश्व समाचार।
विश्व समाचार सुनिए सर्वप्रिया सांगवान से। जिम्बाब्वे में हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनावों के नतीजों में एमरसन मुनांगागवा जीत गए हैं। पिछले साल रॉबर्ट मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटाए जाने के बाद से मुनांगागवा ही जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि राष्ट्रपति के लिए पड़े वोटों में से आधे से ज्यादा मुनांगागवा को मिले हैं। इससे पहले बुधवार को विपक्ष के समर्थकों ने वोटिंग में धांधली को लेकर प्रदर्शन किए थे, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। विपक्ष के नेता नेल्सन चामिसा का आरोप है कि मुनांगागवा की पार्टी जानू पीएफ को जिताने के लिए वोटिंग में धांधली की गई है। जिम्बाब्वे के चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज किया है, लेकिन चमिसा ने पूरे नतीजे आने से पहले ही अपनी जीत का दावा कर दिया। अमेरिका में नवंबर में मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं और एक बार फिर से रूस के हस्तक्षेप का खतरा अमरीका पर मंडरा रहा है। अमरीका की खुफिया एजेंसियों के मुखियाओं ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस खतरे के बारे में चेताया है। व्हाइट हाउस में गुरुवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन, एफबीआई निदेशक क्रिस रे, राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी निदेशक पॉल नाकासोने और ग्रीस सुरक्षा सचिव क्रिश्चियन निल्सन ने अपनी बात रखी। पिछले महीने फिनलैंड में हुई ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के बाद मीडिया से ट्रंप ने कहा था कि उन्हें कोई कारण नजर नहीं आता कि रूस ने 2016 के राष्ट्रपति चुनावों में हस्तक्षेप किया होगा, जिसके बाद उनकी काफी आलोचना भी हुई और फिर उन्हें सफाई देनी पड़ी थी। राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी के निदेशक डेन कॉट्स ने बताया, खुफिया एजेंसियों को लगता है कि अमेरिका के मध्यावधि चुनाव और 2020 के राष्ट्रपति चुनावों को खतरा हो सकता है। आने वाले चुनावों में रूस व्यापक स्तर पर हस्तक्षेप की कोशिश कर रहा है ताकि अमेरिका को कमजोर किया जा सके। रूस के हैकर्स उम्मीदवारों और सरकारी अधिकारियों से जानकारी चुराने की कोशिश करते हैं। डेन कोट्स के शब्द। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी ने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का मीडिया पर हमला करना प्रेस की स्वतंत्रता के मानकों का उल्लंघन है। विशेष अधिकारी डेविड काय ने चेताया कि ट्रंप की ऐसी अपमानजनक टिप्पणियों से पत्रकारों के खिलाफ हिंसा शुरू हो सकती है। बुधवार को फ्लोरिडा में ट्रंप की रैली के दौरान देखा गया कि भीड़ पत्रकारों की तरफ अश्लील इशारे कर रही थी, उन पर चीख रही थी। इसके बावजूद व्हाइट हाउस की प्रवक्ता सारा सैंडर्स ने कहा कि मीडिया ने राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ ज्यादातर नकारात्मक रिपोर्टिंग की है। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति की कुंठा जायज है, उनके खिलाफ 90% कवरेज नकारात्मक ही होती है, जबकि अर्थव्यवस्था बेहतर हो रही है, आईएस भाग रहा है और अमेरिका का नेतृत्व पूरी दुनिया में छा रहा है। इसी हफ्ते फ्लोरिडा में रोजगार के विकास को लेकर दिए उनके बयान को मीडिया ने नहीं छापा। सारा सैंडर्स के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। मशहूर एप्पल कंपनी दुनिया की पहली $1 खरब की कंपनी बन गई है। आईफोन बनाने वाली एप्पल कंपनी के एक शेयर की कीमत आज सुबह $207 पर पहुंच गई। शेयर की कीमत मंगलवार से ही बढ़ रही थी जब कंपनी ने पिछले 3 महीने के अपने अच्छे प्रदर्शन की रिपोर्ट पेश की थी। एप्पल दूसरी बड़ी कंपनियों जैसे अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक को पछाड़ते हुए पहली ऐसी कंपनी बनी है जिसने 1 खरब का आंकड़ा छुआ है। 2007 में आईफोन बाजार में आया था और उसके बाद से कंपनी के शेयरों में 1100% का उछाल आया है। पिछले साल तो शेयरों की कीमत तकरीबन 1/3 बढ़ गई। ईरान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन अब राजधानी तेहरान तक पहुंच गया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट की जा रही वीडियो में दिख रहा है कि सैकड़ों लोग शहर के केंद्रीय इलाकों की तरफ मार्च कर रहे हैं। ये प्रदर्शन बढ़ती महंगाई, गिरती मुद्रा और पानी बिजली की कमी के खिलाफ हो रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन 3 दिन पहले इस्फहान में शुरू हुए, लेकिन अब दूसरे बड़े शहरों में भी फैल गए हैं। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत है। इसका सीधा प्रसारण आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं और मैं हूं मोहम्मद शाहिद। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति पद के चुनाव परिणाम आखिरकार चुनाव आयोग ने जारी कर दिए हैं। वर्तमान राष्ट्रपति मनांगागवा ने इन चुनावों में अपने प्रतिद्वंद्वी नेल्सन चमीसा को हराया है। इन परिणामों के बाद मनांगागवा ने अगले चरण के चुनाव कराने से भी इनकार कर दिया है। वहीं विपक्ष इन परिणामों को फर्जी बता रहा है। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार सुनिए सरप्रिया सांगवान से।
जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति चुनावों में वर्तमान राष्ट्रपति एमरसन मनंगागवा को जीत मिली है। जिम्बाब्वे के चुनाव आयोग की प्रमुख जस्टिस प्रिसिला चिगुम्बा ने इसकी घोषणा की। चुनाव आयोग प्रमुख ने 10 प्रांतों के नतीजे जारी करते हुए बताया कि जानू पीएफ पार्टी के मनंगागवा को 50.8% वोट मिले, जबकि विपक्षी नेता नेल्सन चमीसा को 44.3% वोट मिले हैं। मूवमेंट फॉर डेमोक्रेटिक चेंज गठबंधन के उम्मीदवार चमीसा ने इन परिणामों को खारिज किया है और इन्हें फर्जी बताया है। जिम्बाब्वे के चुनाव आयोग ने कहा कि इसमें कोई धांधली नहीं की गई है। चुनाव आयोग की प्रमुख प्रिसिला चिगुम्बा ने परिणामों की घोषणा करते हुए कहा,
आई प्रिसिला मखन्यारा चिगुम्बा द चेयरपर्सन ऑफ द जिम्बाब्वे इलेक्टोरल कमीशन।
मैं प्रिसिला चिगुम्बा जिम्बाब्वे चुनाव आयोग की अध्यक्ष घोषणा करती हूं कि जानू पीएफ के एमरसन मनंगागवा को राष्ट्रपति चुनाव में आधे से अधिक वोट मिले हैं और इसलिए जानू पीएफ के एमरसन मनंगागवा को 3 अगस्त 2018 से प्रभावी रूप से जिम्बाब्वे गणराज्य का राष्ट्रपति घोषित किया जाता है। ये थे चुनाव आयोग की प्रमुख प्रिसिला चिगुम्बा के शब्द। कथित धांधली को लेकर बुधवार को राजधानी हरारे में विपक्षी गठबंधन के समर्थकों ने प्रदर्शन किया था। उस दौरान गोलीबारी में 6 लोगों की मौत हुई थी। चमीसा के अलावा एमडीसी के चेयरमैन मॉर्गन कोमिची ने परिणामों को खारिज किया। उन्होंने कहा, हमारा एमडीसी गठबंधन पूरी तरह से इन परिणामों को खारिज करता है। हम इन परिणामों को इसलिए नहीं मानते क्योंकि इन्हें उम्मीदवारों के मुख्य चुनाव एजेंट द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है। मैं अपने उम्मीदवार नेल्सन चमीसा का प्रतिनिधित्व करता हूं और पार्टी के मुख्य चुनाव एजेंट ने परिणामों को सत्यापित नहीं किया है। मैंने उन परिणामों पर हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि वे फर्जी हैं। ये थे विपक्षी गठबंधन एमडीसी के चेयरमैन मॉर्गन कोमिची के शब्द। नवंबर में 94 वर्षीय तत्कालीन राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे के इस्तीफा देने के बाद जिम्बाब्वे में पहली बार चुनाव हो रहे हैं। गुरुवार को हुए संघर्ष के बाद राजधानी हरारे में शांति छाई रही। इस दौरान सुरक्षा बलों ने मार्च भी निकाला। राष्ट्रपति मनंगागवा ने कहा है कि संकट समाप्त करने के लिए सरकार चमीसा के साथ बातचीत कर रही है और हिंसा मामले के लिए एक स्वतंत्र जांच का प्रस्ताव दिया है।
जिम्बाब्वे राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम घोषित, रिपोर्ट सुना रही थी सर्वप्रिया सांगवान। 30 जुलाई को असम में जारी हुए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस मुद्दे को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जहां दिल्ली तक ले आई हैं, वहीं उनकी तृणमूल कांग्रेस के 8 नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल कल सिलचर पहुंचा, लेकिन उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया। एनआरसी को लेकर जहां राजनीतिक दलों की बयानबाजी जारी है, वहीं असम में भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल इस पूरे मामले पर चुप हैं। इस चुप्पी के क्या राजनीतिक कारण हैं? गुवाहाटी से दिलीप कुमार शर्मा की रिपोर्ट।
असम में बीते 30 जुलाई को प्रकाशित की गई राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी की फाइनल सूची में जिन 40 लाख लोगों का नाम शामिल नहीं किया गया है, उसे लेकर विपक्ष के लोग मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल पर दबाव बनाते दिख रहे हैं। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लोग असम के बंगाली बहुल इलाकों में जाकर लोगों की सहानुभूति बटोरने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं एनआरसी की आड़ में भाजपा पर वोट बैंक राजनीति के तहत बंगालियों और हिंदी भाषियों को खदेड़ने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद मुख्यमंत्री सोनोवाल की तरफ से फिलहाल इस मुद्दे पर कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई है। उनकी इस चुप्पी पर पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई कहते हैं,
जो पकड़ डालिया हम जो एक्स प्रेसिडेंट है इंडिया का, उसका भी रिलेशन पहले का वो डेप्यूटी स्पीकर है, कोई हमारा एक चीफ मिनिस्टर था अनवर, उसका भी नाम है, और हिंदू का आज जो असम का जो डेप्यूटी स्पीकर है वो तो बीजेपी का है, उसका वाइफ का भी नाम नहीं है। साइलेंस से क्या इसका इंडिकेशन है कि यहाँ ज्यादा ज्यादा गलती हो रहा है, उसीलिए वो मीडिया में नहीं आ रहा है, नहीं तो वो मीडिया में क्यों नहीं रहा है।
असम में लंबे समय से घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा रहा है और इस मुद्दे पर चुनावी राजनीति कोई नई बात नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री सोनोवाल की खामोशी का कारण बताते हुए प्रदेश भाजपा के नेता विजय कुमार गुप्ता ने बीबीसी से कहा,
नहीं, मुख्यमंत्री जी ने एकदम क्लियर कट आश्वासन दिया है, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं, पैनिक होने की जरूरत नहीं। जो भारतीय नागरिक उनका नाम आएगा, कि हमारी सरकार इसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरतेगी, सारे भारतीय नागरिकों का नाम आएगा और बहुत बड़ा ये प्रोसेस था, अगर थोड़ी बहुत कहीं भूल हुई है उसको शुद्ध करेंगे।
एनआरसी के मुद्दे पर मीडिया से मुख्यमंत्री का ज्यादा बात नहीं करने का कारण बताते हुए वरिष्ठ पत्रकार बैकुंठ गोस्वामी कहते हैं,
नहीं नहीं वो तो उसका तो ये एडिट है, नरेंद्र मोदी जैसे अभी तक चुपचाप है, कुछ नहीं बोलती है। वो गोरक्षक को जो ये कन हुआ था, जब गौरी लंकेश को खत्म कर दिया गया तब भी कुछ नहीं बोले थे।
दरअसल एनआरसी को लेकर असम के बंगाली बहुल बराक घाटी और ब्रह्मपुत्र वैली के लोगों में मतभेद रहा है। असम के मूल लोग एनआरसी के पक्ष में है ताकि घुसपैठियों की शिनाख्त कर उन्हें बाहर किया जा सके, जबकि भाजपा धार्मिक उत्पीड़न के तहत यहां आए हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने पर विचार कर रही है। लिहाजा मुख्यमंत्री का इस विषय में खुलकर बोलना पार्टी को महंगा पड़ सकता है। दिलीप कुमार शर्मा, बीबीसी गुवाहाटी।
रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां मुगलसराय रेलवे स्टेशन का पहले नाम बदला गया और अब स्टेशन की दीवारों पर भगवा रंग चढ़ाया जा रहा है। 5 अगस्त को इसके बदले नाम का लोकार्पण करने के लिए रेल मंत्री पीयूष गोयल के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी आ रहे हैं। रेलवे स्टेशन के भगवाकरण को लेकर राजनीतिक दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। सुनिए लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र की ये रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश में पिछले साल बनी बीजेपी सरकार में जगहों के नाम बदलने और भवनों के रंग बदलने के काम में खूब तेजी दिखी, लेकिन करीब 150 साल पुराने मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम भी बदल दिया गया और अब उसका रंग भी बदला जा रहा है। मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर दिया गया है और इसी नाम से बने स्टेशन का लोकार्पण करने 5 अगस्त को बीजेपी नेताओं और मंत्रियों की भारी भरकम टीम मुगलसराय आ रही है। कार्यक्रम में रेल मंत्री पीयूष गोयल के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं। बड़ा कार्यक्रम है, इसलिए स्टेशन की रंगाई पुताई भी हो रही है, लेकिन स्टेशन की दीवारों पर जो रंग चढ़ाया जा रहा है उसे लेकर पहले भी विवाद हो चुके हैं। पुताई का काम करने वाले ठेकेदार ने मीडिया को बताया,
रंगाई पुताई का निर्देश मिला है, बिल्डिंग का फ्रंट एरिया रंगने का है, निर्देश यही केसरिया रंग का है, बॉर्डर इसका जो है केसरिया करने का।
हालांकि रेल प्रशासन इस बात से अनजान बनने की कोशिश कर रहा है। मुगलसराय के मंडल रेल प्रबंधक पंकज सक्सेना कहते हैं,
दिवाली में आप घर पे शादी वादी होती है तो करते ही, आप भी करेंगे, हम भी करते हैं। भभुआ कलर का ऐसा कोई इशू नहीं है, पुराना कलर जो था इसको किसी चीज से जोड़े ना, जो पुराना कलर था वही दोबारा रंग रोगन किया जाए।
मुगलसराय रेलवे स्टेशन से पहले रोडवेज की बसों, प्राइमरी स्कूलों, सरकारी भवनों, राज्य सचिवालय और यहाँ तक की हज हाउस पर भी भगवा रंग चढ़ाने की कोशिश हुई। कोशिश का विरोध जरूर हुआ, लेकिन ज्यादातर जगहों पर यह कामयाब रही। यूं तो दीवारों का रंग बदलना कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन दीवारों पर जो रंग चढ़ाया जा रहा है उससे सत्तारूढ़ पार्टी का खास लगाव है। राजनीतिक दलों को आपत्ति इसी पर है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता द्विजेंद्र त्रिपाठी कहते हैं,
गेरुआ वस्त्र पहनते थे, भगवा वस्त्र पहनते थे, तो सब मिलाकर के देखा जाए तो आम लोगों की जो समस्याएं हैं उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरह से के स्लोगन तैयार करती है, इस तरह की विचारधारा पैदा करती है जिससे समाज में एक विकृति आवे, एक विघटन आवे और लोग मूल मुद्दों से उन लोगों का ध्यान हट जाए।
कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी ने भी इसकी आलोचना की है। राजनीतिक दलों ने उस वक्त भी आपत्ति जताई थी जब स्टेशन का नाम बदलने की घोषणा हुई थी। मुगलसराय स्टेशन का निर्माण 1862 में उस वक्त हुआ था जब ईस्ट इंडिया कंपनी हावड़ा और दिल्ली को रेल मार्ग से जोड़ रही थी, लेकिन पिछले साल अक्टूबर में सरकार ने इसका नाम बदलने का फैसला किया, जिसका विपक्ष ने संसद से लेकर सड़क तक विरोध किया था। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
रेलवे स्टेशन पर भगवा रंग। उत्तर प्रदेश से चलते हैं उसके पड़ोसी राज्य बिहार की ओर। आज के दौर में 1250 रुपये की कीमत क्या है? आपसे ये सवाल पूछा जाए तो शायद आप कहेंगे बहुत कुछ या कुछ भी नहीं, लेकिन बिहार के सरकारी स्कूलों में काम करने वाले रसोइयों को हर महीने 1250 रुपये मानदेय के तौर पर मिलते हैं और वो भी अनियमित तौर पर। लेकिन उनकी इस नौकरी पर अब खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है कि अगर घर में शौचालय नहीं तो नौकरी नहीं। क्या है ये पूरी खबर बता रही हैं पटना से सीटू तिवारी।
मोदी सरकार वाहे कोरे माना मानिया, नीतीश सरकार वाहे कोरे माना मानिया, हमनी पर करेला सुसाना वाहो दीदी खोला तू ना जारी।
कुमांती देवी की छाती में दर्द रहता है। बीते 10 साल से वो बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि प्रखंड में एक सरकारी स्कूल में रसोइया हैं। उन्हें चूल्हे पर रोजाना 350 बच्चों का मिड डे मील तैयार करना पड़ता है। लेकिन छाती के दर्द के अलावा कुमांती को नई परेशानी ने आ घेरा है। वो बताती है,
शौचालय नहीं है तो बोल का शौचालय बना न तो निकाल दे। सब रसोईया 1250 रुपया के महीना कमाता, तो 1250 रुपया में वो कैसे अपन घर परिवार बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई की खाना खुराक करी की।
दरअसल बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने बीते 12 जुलाई को पत्रांक जारी कर कहा है कि मिड डे मील में कार्यरत रसोइया अगर 15 अगस्त 2018 तक अपने घर में शौचालय नहीं बनवाते हैं तो उनकी सेवाएं समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि बीबीसी से बातचीत में मध्यान्ह भोजन के उपनिदेशक जीवेन झा कहते हैं,
इस तरह का निर्देश है सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से आया है कि उनको उनसे सबों से इंश्योर करवाइए कि उनके घर में शौचालय हो जाए। तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए, एक तरह से अवेयर करने के लिए, उनको डराने और धमकाने के लिए लेटर नहीं दिया गया है।
आंकड़े देखें तो बिहार में मिड डे मील योजना में कुल 2,25,000 रसोइयां हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक मिलने वाले मध्याह्न भोजन से 1,28,00,000 बच्चे लाभान्वित होते हैं, जबकि नामांकन 1,90,00,000 बच्चों का है। इस योजना में रसोइयों को हर माह केंद्र सरकार 1,000 रुपए का भुगतान मानदेय के तौर पर करती है, वहीं बिहार सरकार 250 रुपए का भुगतान करती है। ये 1,250 रुपए भी उन्हें साल में 10 माह मिलता है। जून और मार्च महीने में मानदेय नहीं देने का प्रावधान है। लेकिन रसोइयों की परेशानी का आलम यह है कि ये अल्प मानदेय भी कई माह लटका रहता है। राजधानी पटना से सटे फतुहा प्रखंड की सोना देवी को 8 माह से मानदेय नहीं मिला है। 3 बच्चों की माँ सोना देवी बाकीपुर प्राथमिक कन्या विद्यालय में रसोइये के तौर पर काम करती हैं। वो कहती हैं,
तो सरकार का हमने दिन भर 9 बजे से 4 बजे तक खटाता है, क्या बाल बच्चा के होगा, बेगारी कराता है जो नौकर, तो एगो निर्माण मजदूर में जो खटता है, जो रोपा रोपे जाता है तो 300 रुपया देता है, 100 रुपया के हिसाब से सरकार देता तो 300 रुपया होता।
1,250 में दम नहीं,
10 से कम नहीं।
हाल ही में राज्य के रोहतास जिले के बैसपुरा गांव में रसोइया कंचन देवी ने आर्थिक तंगहाली से परेशान होकर अपने 16 साल के बेटे को जहर देकर खुद भी आत्महत्या कर ली थी। स्थानीय पत्रकारों के मुताबिक उन्हें 7 माह से मानदेय नहीं मिला था। रोज सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक काम करने वाली ये रसोइया बिहार में लगातार आंदोलित है। बिहार राज्य रसोइया संघ रसोइयों के मुद्दे पर लगातार काम कर रहा है। संघ 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर रसोइयों को 18,000 का मासिक वेतन, उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित करने और मानदेय के नियमित भुगतान की लगातार मांग कर रहा है। संघ की राज्य अध्यक्ष सरोज चौबे कहती हैं,
शौचालय के आधार पर अगर रसोइयों के ऊपर हाथ डालने की कोशिश की गई तो हम इस पर लड़ाई लड़ेंगे। बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ से जुड़ी हुई कोई भी रसोइया कर्ज लेकर के नहीं बनाएगी शौचालय।
ऐसा नहीं है कि रसोइयों को सिर्फ 10 माह ही काम करना पड़ता है, बल्कि इसी साल उन्हें मार्च महीना, जिसमें उन्हें मानदेय का प्रावधान नहीं है, इस महीने में भी 23 दिन काम कराया गया। रसोइये बताते हैं कि चुनाव से लेकर विद्यालय में होने वाले किसी भी सरकारी गैर सरकारी आयोजन में उनसे बिना भुगतान के मजदूरी करवाई जाती है।
मिड डे मील के रसोइयों के लिए घर में शौचालय अनिवार्य, रिपोर्ट पेश कर रही थी सीटू तिवारी। अब जान लेते हैं कि आज के अखबारों में क्या कुछ खास है। अखबारों के साथ सर्वप्रिया सांगवान स्टूडियो में आ चुकी हैं। जी सर्वप्रिया बताएं।
शाहिद, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी NRC के ड्राफ्ट का मुद्दा तो कई दिन से छाया हुआ है और पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी TMC तो जोर शोर से इसका विरोध कर रही है। दैनिक भास्कर ने छापा है कि असम के सिलचर में पीड़ितों से मिलने जा रहे 6 TMC सांसद और 2 विधायकों को हिरासत में भी ले लिया गया, यहां तक कि केंद्र सरकार के खिलाफ आज विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव भी ला सकती है तृणमूल कांग्रेस। लेकिन गौर करने वाली बात क्या है शाहिद
जी,
बात वो है जिसका जिक्र इंडियन एक्सप्रेस ने किया है। 13 साल पहले खुद तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने लोकसभा में घुसपैठ के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। उन्होंने तो इस घुसपैठ को डिजास्टर कहा था कि वोटर लिस्ट में बांग्लादेशी भी शामिल हो गए हैं।
इसके अलावा जो टीएमसी के वहाँ के असम के प्रमुख हैं अध्यक्ष, उन्होंने भी इस्तीफा दिया है, एक ऐसी भी खबरें हैं।
जी हाँ जी। इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन अब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस भी होगा।
जी
लोकसभा में सर्वसम्मति से एक महत्वपूर्ण बिल पास किया गया है जिसमें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है।
और ये मोदी सरकार की बहुत बड़ी कई जो विधेयक थे उसमें से एक सबसे अहम विधेयक ये था जो इसको संवैधानिक दर्जा देने
ये का। और इससे पहले जो उन्होंने एक और पास किया जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जो SC ST कानून में जो बदलाव करने के आदेश दिए थे उन्होंने उसको वापस एक बिल पास करते हुए कहा है कि कोई बदलाव नहीं होगा। तो हिंदुस्तान टाइम्स का अपनी रिपोर्ट में कहना है कि बीजेपी की ये तैयारी है आने वाले लोकसभा चुनावों को देखते हुए कि वो सभी कम्युनिटीज को कैसे बांध कर रख सकती है।
लेकिन देखना अब सरप्रिया ये है कि जो एक और सरकार का बिल कहा जा रहा है 3 तलाक को लेकर, वो कब तक पेश होता है।
जी तो मतलब तैयारियां शुरू हो गई हैं इलेक्शंस के लिए।
चलिए बढ़ते हैं आगे और बताएं।
तो सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री यानी व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से हटाने के संकेत दिए हैं। मतलब आप इसे सिर्फ तलाक का आधार बना सकते हैं लेकिन इस पर कोई मामला दर्ज नहीं हो सकता। अब तक जो धारा 497 के मुताबिक कानून जो कहता है वो ये कि अगर कोई व्यक्ति किसी शादीशुदा महिला से आपसी सहमति से भी शारीरिक संबंध बनाता है तो उस महिला का पति उस व्यक्ति पर केस कर सकता है, महिला पर कोई केस नहीं होता है। तो अब जो सुनवाई SC में हो रही है उस संविधान पीठ का कहना है कि शादी की पवित्रता के लिए दोनों पति पत्नी जिम्मेदार हैं तो व्याभिचार के लिए सिर्फ पति को क्यों दोषी ठहराया जाए। और कोर्ट के अनुसार इस कानून का मतलब ये हुआ कि महिला पति की जागीर है और किसी पराये पुरुष से संबंध बनाना भी पति की इच्छा पर निर्भर करता है।
जी।
वहीं अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है तो श्रोताओं को बता दें कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के बीच जो समझौता हो गया है, केंद्र सरकार ने कॉलेजियम के फैसले को मान लिया है और अब उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश KM जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन मिल जाएगा, यानी वो आ जाएंगे और उनके साथ मद्रास हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी और ओडिशा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विनीत सरन भी सुप्रीम कोर्ट में शामिल होंगे। इंडियन एक्सप्रेस ने स्रोतों के हवाले से ये खबर छापी है।
इसके अलावा मैं एक खबर का उल्लेख करना चाहूंगा सरप्रिया, यह है दैनिक भास्कर की। आजकल बहुत चल भी रहा है कि इमरान खान को लेकर, तो ये हेडिंग इन्होंने बनाई है, मोदी समेत किसी विदेशी नेता को नहीं बुलाएंगे, सिर्फ दोस्तों को दिया न्योता।
हाँ, इमरान खान कह रहे हैं कि बहुत ही सादा अपना शपथ समारोह
PTI ने कहा है उनकी पार्टी ने। बहुत बहुत शुक्रिया सरप्रिया इतनी विस्तार पूर्वक अखबारों की समीक्षा के लिए।
चीन और भारत, दो प्राचीन संस्कृतियां, दो पड़ोसी देश। चीन जहां अब भी महात्मा गांधी के प्रशंसक मौजूद
हैं।
चीन जहां शंघाई जैसे जादुई शहर हैं।
और पिछले 14 साल के अंदर जितनी भी आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं ये सारी डेवलप हुई है। और क्यों हुआ है? बिकॉज शंघाई हांगकांग से कम्पीट करता है।
और हिंदी फिल्मों के लिए दीवानगी भी।
कोई बता दे मैं हूं कहां।
सुनिए चीन की कहानियां, मैं विनीत खरे जल्द ही लेकर आऊंगा BBC हिंदी रेडियो पर।
कल नमस्कार भारत में हम आपको चीन पर पहली रिपोर्ट सुनाएंगे, तो सुनना नहीं भूलिएगा। बढ़ते हैं आगे। किसी जरूरतमंद को अंगदान महादान की तरह देखा जाता है, लेकिन किसी शख्स के लिए अंगदान करने की प्रक्रिया से गुजरना कानूनी प्रक्रिया भी हो सकती है। ऐसे ही एक मामले से रूबरू करा रहे हैं BBC संवाददाता अनंत प्रकाश, जहां एक महिला को अपनी किडनी दान करने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े।
ये मैं मानती हूँ कि हमारे सोसाइटी में संपूर्ण शरीर को 5 तत्व में विलीन करना अच्छा माना जाता है, ऐसे में स्वर्ग मिलता है। पर ऐसे स्वर्ग का क्या काम जब एक दूसरा व्यक्ति बीमार होकर के तरफ तरफ का मरे, आप उसको जीवन दान दे सकते हैं?
ये शब्द हैं वर्षा शर्मा के, जो बीते 1 साल से अपने परिवार, समाज और सरकारी तंत्र से बस एक बात को लेकर संघर्ष कर रही थीं कि उन्हें अपने दोस्त को किडनी दान करने का अधिकार दिया जाए। 49 वर्षीय वर्षा शर्मा को इस पूरी लड़ाई में सबसे पहले अपने आप से लड़ना पड़ा। अंगदान के लिए उन्हें 1 साल के अंदर अपने शरीर के वजन को 76 किलोग्राम से लेकर 62 किलोग्राम तक लाना पड़ा।
मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद है, बेकरी आइटम्स एंड आइसक्रीम बहुत पसंद है, ये सब जो है मैंने तिलांजलि दी है।
शारीरिक रूप से खुद को किडनी दान करने के लिए तैयार करने के बाद वर्षा शर्मा के सामने एक अगली चुनौती ये थी कि वह अंगदान के लिए सभी नियमों का पालन करें। अपने दोस्त कर्नल पंकज भार्गव को किडनी दान करने की प्रक्रिया में ये पड़ाव उनके लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहा। स्वयं अंगदान करने की प्रक्रिया से गुजर चुके समाज सेवी अनिल श्रीवास्तव इस मामले में वर्षा की मदद करने के लिए आगे आए।
मेडिकल तौर से वर्षा फिट थी, कमेटी के पास जाना था और कमेटी के पास जाने से पहले सारे अस्पताल को कर्नाटका सरकार की ओर से एक चिट्ठी आई थी, हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से चिट्ठी आई थी सीधा अस्पताल को, वर्षा को नहीं और कर्नल साहब को नहीं, कि अगर ये केस आपने लिया तो शायद आपकी लाइसेंस को जब्त कर सकते हैं।
कर्नाटक सरकार की ओर से जारी की गई चिट्ठी में ये कहा गया कि किडनी दान करने वाली वर्षा शर्मा आर्थिक रूप से अपनी बहन पर आश्रित हैं और वर्षा की बहन से इस बारे में कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया है और वह इसके खिलाफ हैं। इस चिट्ठी के सामने आने के बाद वर्षा शर्मा को अपने मामले को लेकर हाईकोर्ट में जाना पड़ा। कर्नाटक हाईकोर्ट में वर्षा शर्मा की ओर से केस लड़ने वाली वकील अनुचिंगप्पा बताती हैं कि ये पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के उल्लंघन का मामला है।
हाईकोर्ट गए और हमने जो सिचुएशन है वो सब जज साहब के सामने रख दिया। द हाईकोर्ट टुक इट वेरी वेरी सीरियसली। जज साहब ने कहा कि देखिए, इट इज समवन्स लाइफ एंड डेथ एंड यू आर प्लेइंग विद समवन्स लाइफ, यू कैन नॉट डू दिस। तो उसके हिसाब से उन्होंने उसी रात को 8:30 to 10 तक इंक्वायरी की और परमिशन ले ली। 27 July को ऑपरेशन भी हुआ।
बीते कई महीनों से डायलिसिस पर रहने वाले पंकज भार्गव के लिए वर्षा शर्मा की ये जीत एक नई जिंदगी मिलने जैसा अनुभव था।
आज के समाज में भैया जो काम उसने किया वो कोई भी इस दुनिया में पॉसिबल नहीं है करने के। मतलब किडनी देना एक बहुत बड़ी चीज है। बहन बनाया हुआ मैंने उनको अपनी, वो मेरी बहन, पिछले 30-35 साल से आज की तारीख में किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है।
आनंद प्रकाश, BBC हिंदी, दिल्ली।
बर्मिंघम में भारत और इंग्लैंड के बीच जारी पहले टेस्ट मैच के कल दूसरे दिन भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने शतकीय पारी खेली। उन्होंने 225 गेंदों में 149 रन बनाए। भारतीय टीम 274 रन पर ऑल आउट हो गई। इससे पहले दिन में इंग्लैंड की टीम 287 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। इंग्लैंड की भारत पर इस समय केवल 13 रनों की बढ़त है और दूसरी पारी में इंग्लैंड का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 9 रन है। इसी स्कोर से आगे आज इंग्लैंड की टीम खेलना शुरू करेगी। वहीं कल लंदन में चल रहे महिला हॉकी विश्व कप में भारतीय टीम की चुनौती समाप्त हो गई। आयरलैंड के साथ खेले गए क्वार्टर फाइनल मैच में दोनों टीमें चौथे क्वार्टर तक कोई गोल नहीं कर पाई थीं, जिसके बाद शूटआउट में भारतीय टीम 1-3 से हारकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। इसके अलावा आप जान लेते हैं अन्य खेल की खबरें खेल समाचारों में।
भारतीय खिलाड़ी साइना नेहवाल ने विश्व चैंपियनशिप में थाईलैंड की रत्नाचौंक इंतनॉन को हराकर कल क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। पिछले साल इस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली विश्व नंबर 10 साइना ने 8वीं बार इस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। उन्होंने 2015 में रजत पदक जीता था। आज उनका सामना स्पेन की कैरोलिना मारिन से होगा। वहीं पुरुष वर्ग में भारत के श्रीकांत का सफर खत्म हो गया। उन्हें मलेशिया के डारेन लियू ने मार दी। इसके अलावा भारत की पीवी सिंधु ने भी दक्षिण कोरिया की सुंग जी यून को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। सिंधु ने विश्व नंबर 9 यून को 42 मिनट के भीतर सीधे गेमों में 21-10, 21-18 से मात देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। साल 2013 और 14 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का कांस्य पदक अपने नाम करने वाली सिंधु का आज सामना क्वार्टर फाइनल में जापान की विश्व नंबर 6 और चिर प्रतिद्वंदी नोजोमी ओकुहारा से होगा। इसके अलावा पुरुष एकल के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने में भारत के बी साई प्रणीत भी कामयाब रहे। अब उनका सामना जापान के खिलाड़ी केंतो मोमाता से होगा।
खेल समाचार सुन रहे थे राखी शर्मा से और अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर सरप्रिया सांगवान से।
जिम्बाब्वे में हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनावों के नतीजों में एमरसन मुनांगागवा जीत गए हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि राष्ट्रपति के लिए पड़े वोटों में से आधे से ज्यादा मुनांगागवा को मिले हैं। अमरीका में नवंबर में मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं और एक बार फिर से रूस के हस्तक्षेप का खतरा अमरीका पर मंडरा रहा है। अमरीका की खुफिया एजेंसियों के मुखियाओं ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस खतरे के बारे में चेताया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी डेविड काय ने चेताया है कि ट्रंप की मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणियों से पत्रकारों के खिलाफ हिंसा शुरू हो सकती है। मशहूर एप्पल कंपनी दुनिया की पहली $1 खरब की कंपनी बन गई है। आईफोन बनाने वाली एप्पल कंपनी के एक शेयर की कीमत आज सुबह $207 पर पहुंच गई। ईरान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन पर राजधानी तेहरान तक पहुंच गया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट की जा रही वीडियो में दिख रहा है कि सैकड़ों लोग शहर के केंद्रीय इलाकों की तरफ मार्च कर रहे हैं। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे शाकिर आलम। आपसे अगली मुलाकात दिन भर में शाम 7:30 बजे होगी। मोहम्मद शाहिद को दें अनुमति। नमस्कार।